हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। गुरमीत ने हाथ जोड़ते हुए कहा, गुरमीत मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे आगे, हमारे बच्चे को कुछ मत कर, मैं इस परिवार से सारे रिश्ते तोड़ दूंगा, अपनी बीवी बच्चे को लेकर तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, कभी लौटकर नहीं आऊंगा, मेरे या मेरे बीवी बच्चे की वजह से तुझे या जसमीत को कोई परेशानी नहीं होगी। वो रो रहा था, दे दे उसे। आयुष्मान की आंखों में आंसू भर आए थे, ये दूसरी बार था जब इस बच्चे की जान बचाने के लिए वो हाथ जोड़ रहा था, पहले प्रेम और अब गुरमीत। जसमीत जो स्तब्ध खड़ी थी, उसने गुरमीत को नम आंखों से देखते हुए भारी गले से कहा, बच्चे नू वापस कर देओ, ए पाप अपने सरते मत लेओ, जे मेरे कारण तुसी इस मासूम दी जान ले लेंदी ता वाहे गुरु कदे भी मेरी सोनी गोद नहीं भरणगे। गुरमीत वहीं खड़ा रहा, जसमीत उसके पास गई और उसके बाहों से बच्चे को लेकर प्रीति के पास आकर बैठ गई। उसने बच्चा प्रीति को देते हुए कहा, लीजिए परजाई, आपका बेटा। प्रीति ने तुरंत अपने बच्चे को अपनी बाहों में लेकर उसे अपने सीने से लगा लिया। जाने कितने ही बार रोते हुए उसने उसके चेहरे को चूमा, उसके आंखों से आंसू बहते रहे और वो अपने बेटे को दुलार करती रही। कुछ पल बाद वो कुछ संभली और बच्चे को लेकर आयुष्मान के पास आई। मुझे अभी इसी वक्त यहाँ से जाना है, मुझे अपने घर ले चलिए प्लीज। उसके करुण निवेदन ने कईयों का हृदय भेद दिया। आयुष्मान ने सिर हिला दिया, सामान पहले ही पैक था। बिना एक पल गवाए उसने सामान उठाया और प्रीति और उसके बच्चे को लेकर वहां से निकल गया। न किसी ने कुछ कहा और न दादी की हिम्मत हुई कि उन्हें रोक लें, क्योंकि वहीं उन्होंने उन्हें यहां लाया था और यहां उनके साथ जो हुआ कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार वो खुद भी थी। अगर अभी उस बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या होता, ये सोचकर ही उनका मन भय से कांप उठा था। जो यहाँ हुआ उसके बाद कोई और भी उन्हें नहीं रोक सका। गाड़ी से वे एयरपोर्ट पहुँचे, गनीमत से एक घंटे बाद की टिकट मिल गई और वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहाँ से सीधे वे गुड़गांव वाले अपने अपार्टमेंट पहुँचे। इन्हीं सब में शाम के 7 बज गए थे। सारे रास्ते प्रीति अपने बेटे को अपने सीने से लगाए रही। उसने एक बार भी आयुष्मान से बात नहीं की। वहां हवेली में बोले शब्दों के बाद एक शब्द नहीं निकला था उसके लबों से। अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद वो सीधे अपने कमरे में चली गई। आयुष्मान भी दरवाज़ा बंद करके उसके पीछे पीछे कमरे में आया। प्रीति बच्चे को बेड पर सुला चुकी थी और उसके पास बैठे उसके सर पर प्यार से थपकी दे रही थी। बच्चा रास्ते में ही सो गया था और अब भी सो रहा था। आयुष्मान ने बैग साइड में रखा, फिर प्रीति को देखकर बोला, प्रीति तुम थक गई होगी, कपड़े बदलकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाने के लिए कुछ बना देता हूँ। प्रीति ने उसकी बात सुनकर निगाहें उसकी तरफ उठाईं। उसकी लाल आंखें देखकर आयुष्मान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। प्रीति ने लाल सुनी निगाहों से उसे घूरते हुए रोषपूर्ण लहजे में कहा, कोई जरूरत नहीं आपको मेरे या मेरे बच्चे के लिए कुछ भी करने की, मैं अपना भी ध्यान खुद रख सकती हूँ और आपकी दया और एहसान के बिना अपने बच्चे को भी अकेले संभाल सकती हूँ। आयुष्मान उसकी बात सुनकर और ज्यादा चौंक गया और आंखें बड़ी बड़ी करके अचंभित सा उसे देखते हुए हैरानी से बोला, ये तुम क्या कह रही हो प्रीति, जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ, आप पहले ही मेरे या मेरे बच्चे के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, अब और कोई एहसान करने की जरूरत नहीं है आपको हम पर, ये मेरा बच्चा है तो मैं संभाल लूंगी इसे भी और खुद को भी, हमें आपकी दया और एहसान की अब कोई जरूरत नहीं है। प्रीति एक बार फिर गुस्से में उस पर बरस पड़ी। उसकी तेज आवाज से उनका बेटा जाग गया और प्रीति के चुप होते ही वहां उसकी किलकारियां गूंज उठीं। प्रीति के चेहरे के सख्त भाव एकदम से कोमल हो गए। उसने बेरुखी से आयुष्मान पर से अपनी निगाहें फेर ली और अपने बेटे को अपनी बाहों में लेकर सुलाने लगी। आयुष्मान शौक सा खड़ा प्रीति को देखते हुए उसके इस तरह के व्यवहार के पीछे के कारण को समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर में बच्चा फिर से सो गया। प्रीति ने उसे बेड के बीच में अच्छे से सुलाया और फिर बेड से नीचे उतरकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद हाथ मुंह धोकर बाहर आई, एक नज़र अपने बेटे को देखा और आयुष्मान को लगभग नज़रअंदाज करते हुए कमरे से बाहर निकल गई। आयुष्मान जो अब भी अपनी ही ख्यालों में गुम प्रीति के इस तरह के व्यवहार के पीछे की वजह को समझने की कोशिश कर रहा था, वो दरवाजे के बंद होने की आवाज़ सुनकर होश में आया और एक नज़र अपने बच्चे को देखने के बाद कमरे से बाहर निकल गया। किचन से लगातार आवाज़ आ रही थी। गुस्से में प्रीति बर्तनों को जोर जोर से पटक रही थी या शायद अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन इस तरह से बाहर निकाल रही थी। आयुष्मान तुरंत किचन में पहुंचा, तब प्रीति पतीला पकड़े खड़ी थी। आयुष्मान पर नजर पड़ते ही उसने बेरुखी से अपना चेहरा फेर लिया और जैसे ही पतीला स्लैब पर पटकने को हुई, आयुष्मान ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक दिया। दूसरे हाथ से पतीला पकड़कर उसने प्रीति के हाथ से पतीला लेकर उसे साइड रख दिया और प्रीति को अपनी तरफ घुमा लिया, पर प्रीति ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, नाराजगी से अपना चेहरा फेरे खड़ी रही। आयुष्मान कुछ पल उसके चेहरे को देखता रहा, जहाँ गुस्सा, नाराजगी और दर्द के भाव झलक रहे थे। फिर उसने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए बड़े ही प्यार से बोला, क्या हुआ है प्रीति? मेरी कौन सी बात तुम्हें इतनी बुरी लग गई कि मेरे तरफ देख भी नहीं रही? इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा क्यों? वहाँ जो हुआ उसमें मेरी तो गलती नहीं थी, फिर मुझसे इतना बेरुखी भरा व्यवहार क्यों कर रही हो तुम? अपना गुस्सा इन बेजान चीजों पर क्यों निकाल रही हो? अगर नाराजगी मुझसे है तो चीखो चिल्लाओ मुझ पर, यूँ खामोश रहकर मेरा दिल तो ना जलाओ।